नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार के कामकाज से संबंधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की दो रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की। विधानसभा का ई विधान ऐप शुरू। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, अब सदन का कामकाज पूरी तरह से इस ऐप के माध्यम से होगा। वस्तु और सेवा कर विभाग ने धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने प्रतिबंधित चीनी माझा की बिक्री में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार के कामकाजों से संबंधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की दो रिपोर्ट सदन पटल पर रखी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 सदन में पेश किया। सदन में इस विधेयक पर जानकारी देते हुए श्री सूद ने बताया कि यह विधेयक राजधानी में चल रहे शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसेगा। वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस विधेयक पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह विधेयक निजी स्कूलों के हित में लाया गया है। इससे पहले सदन में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने वाला था।
ऑपरेशन सिंदूर उत्तर था उन सभी आंसुओं का जो हमारी बहनों की आंखों से निकले। ऑपरेशन सिंदूर उन सभी चीखों का उत्तर था जो उन माओं ने अपनी बेटों की अर्थी से लिपट लिपट के चिल्लाई और रोई, उसका जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। ये सैन्य अभियान नहीं था, ये हर शहीद के परिवार का सम्मान था जो माननीय मोदी जी की वजह से मिला।
विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा में अब पूरी तरह से ई विधान ऐप लागू हो गया है और सदन का कामकाज अब पूरी तरह से इस ऐप के माध्यम से होगा। आज विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले मीडिया से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि सदस्य अब रिपोर्ट्स, बिल, प्रतिवेदन और कार्यसूची को ऑनलाइन माध्यम से देख सकेंगे।
दिल्ली असेंबली की ओर से पूरी तरह से ये ई विधान एप्लीकेशन को लागू कर दिया गया है। आज उसका पहला दिन है। सदस्यों ने भी पूरी ट्रेनिंग की है, तैयारी की है और वो भी अब नेवा जो हमारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है उसके माध्यम से ही सदन में कामकाज होगा।
श्री गुप्ता ने आगे कहा कि पर्यावरण के प्रति दिल्ली विधानसभा प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, जिसका परिणाम है कि आज विधानसभा की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी तरह से सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा की वजह से दिल्ली विधानसभा हर वर्ष 1,75,00,000 रुपए बचाएगी।
जो ऊर्जा का स्रोत है अब सोलर है और ये एक बहुत बड़ा दिल्ली विधानसभा की ओर से पर्यावरण में एक योगदान है दिल्ली के पर्यावरण के लिए। मैं आह्वान करता हूँ दिल्ली के लोगों से कि वो भी इसी तरह से सोलर को अपनाएं। सोलर कितना स्मूथ है, कितना आसान है। मात्र 100 दिन के अंदर अंदर हमने इसको पेपरलेस भी किया और सोलर से प्रकाशवान भी किया।
श्रावण मास के अंतिम सोमवार के दिन आज शहर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन के चौथे और अंतिम सोमवार के दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी शहर के अशोक विहार स्थित वैद्यनाथ महादेव मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया।
आज सुबह से ही शहर के मंदिरों में भक्त भगवान शिव की पूजा करने के लिए लंबी कतारों में देखे गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर, नीले छतरी वाले मंदिर, अशोक विहार में बैद्यनाथ महादेव मंदिर, कैनॉट प्लेस के प्राचीन शिव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर शहर के अलग अलग इलाकों में भक्तों ने भंडारों का भी आयोजन किया। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि रुद्राभिषेक न केवल आत्मशुद्धि का मार्ग है बल्कि लोक कल्याण की कामना का भी एक श्रेष्ठ उपाय है। उन्होंने भगवान से सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने और सभी को स्वस्थ, सुखी व संतुलित जीवन प्रदान करने की प्रार्थना की। सकलेन अख्तर के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी दिल्ली वासियों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ यह अभियान आज एक जन आंदोलन बन देशवासियों की एकता और देशभक्ति का प्रतीक बन गया है। उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले वह अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने आज स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हिंदू राव अस्पताल में श्रमदान किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि स्वच्छता ही असली सेवा है और अस्पताल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं को साफ और सुंदर रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर के दक्षिण दिल्ली आयुक्तालय ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC प्राप्त करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस धोखाधड़ी में राजधानी दिल्ली के नारायणा स्थित लोहे और इस्पात की वस्तुओं का व्यापार करने वाले एक करदाता को गिरफ्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि यह मामला लगभग 261 करोड़ रुपए के कर योग्य मूल्य के फर्जी चालानों के आधार पर बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति के कुल 47 करोड़ 12 लाख रुपए के ITC का धोखाधड़ी से लाभ उठाने और उसे आगे बढ़ाने से संबंधित है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने प्रतिबंधित चीनी मांझा की बिक्री में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में चीनी मांझे के 660 रोल जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार इसके अलावा एक टेम्पो और एक स्कूटी भी जब्त की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान सांसद श्रीबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। उधर लोकसभा में भी बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में आज नई दिल्ली में देहांत हो गया। राज्यसभा के सदस्य शिबू सोरेन किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। डेढ़ महीने पहले उन्हें पक्षाघात भी हुआ था। वे पिछले एक महीने से दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में भर्ती थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल जाकर श्री सोरेन को श्रद्धांजलि दी। अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शोक व्यक्त करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिबू सोरेन ने जनजातीय समाज के अधिकारों, सम्मान और उत्थान के लिए जो लंबा संघर्ष किया वह सदैव स्मरणीय रहेगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने ईश्वर से शोकाकुल परिवार और उनके अनुयायियों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की। सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से किए गए फर्जी दावे को खारिज कर दिया है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाने से 60 अरब डॉलर के बाजार में गिरावट के बाद भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो फैक्ट चेक यूनिट ने इस दुष्प्रचार को झूठा बताते हुए जोर देकर कहा कि भारत में कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। फैक्ट चेक यूनिट ने लोगों को सतर्क रहने और सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक खबरों पर ही भरोसा करने की सलाह दी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रहने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें साइबर अपराध गुरुग्राम के ACP प्रियांशु दीवान और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल शामिल होंगे। इसे FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना PMMVY के लिए विशेष पंजीकरण अभियान को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट।
आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में घर घर जाकर जागरूकता सह नामांकन अभियान का उद्देश्य सभी पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तक पहुंचना और योजना के अंतर्गत उनका समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करना है। मंत्रालय के अनुसार यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, साथ ही बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। अब तक तक 4,05,00,000 से अधिक लाभार्थियों को उनके बैंक या डाकघर खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की मातृत्व लाभ राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत भाजपा विधायक व मुख्य सचेतक अभय वर्मा ने की। वहीं विधानसभा को पेपरलेस किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को बधाई दी। निधन संबंधी उल्लेखों में दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को मॉनसून सत्र के पहले दिन पहलगाम आतंकी हमले, एयर इंडिया विमान दुर्घटना और बेंगलुरु भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस के पूर्व विधायक जय किशन और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को भी श्रद्धांजलि दी। पूरे सदन द्वारा शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के लिए उन्हें बधाई दी गई। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के सैन्य बलों, खुफिया तंत्र, सुरक्षा बलों को भी बधाई दी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना का आभार जताया। विधानसभा में दिल्ली के स्कूलों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विधेयक को शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सदन पटल पर रखा तो कई विधायकों ने विशेष उल्लेख के दौरान अपने अपने क्षेत्र के मामलों को उठाया। सदन में सीएजी की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। चर्चा के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को सैन्य अभियान नहीं बल्कि देश के हर परिवार के सम्मान का प्रतीक बताया। भाजपा विधायक और मुख्य सचेतक अभय वर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रस्ताव रखते हुए कहा कि आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म, उनका नाम पूछकर मारा, जिसकी दुनिया भर में निंदा की गई। हालांकि इसी दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने टीका टिप्पणी शुरू कर दी, जिसमें कुछ देर के लिए सदन में भारी हंगामा होने लगा। दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने चर्चा पर बोलते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य से जनता का सेना पर विश्वास और बढ़ गया है। उन्होंने सदन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य बलों को दुश्मनों के खिलाफ घर में घुसकर उनके आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूत करने की खाली छूट दे दी है। भाजपा विधायक सूर्य प्रकाश खत्री शिखा राय ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताते हुए आप नेताओं को आईना दिखाया। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की नेता आतिशी ने एक बार फिर सीज फायर की घोषणा दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख द्वारा किए जाने का उल्लेख किया। आपके भी कई विधायकों ने चर्चा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता को राष्ट्र के गौरव से जोड़ा और भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया। विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता कभी भी देश हित की परवाह नहीं की और भारत की गरिमा को नीचा दिखाने के लिए लगातार षड्यंत्र किए। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर जनता को भरोसा है। सदन में जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2023-24 के लिए सीएजी रिपोर्ट सदन पटल पर रखी, वहीं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण और विनियमन विधेयक 2025 पेश करते हुए पूर्व की आप सरकार पर हमला बोला और कहा कि अब सख्त कानून से फीस वृद्धि में स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। सदन में इसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने शून्यकाल में अपने अपने क्षेत्रों में के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार के कामकाज से संबंधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की दो रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की। विधानसभा का ई विधान ऐप शुरू। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा अब सदन का कामकाज पूरी तरह से इस ऐप के माध्यम से होगा। वस्तु और सेवा कर विभाग ने धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने प्रतिबंधित चीनी मांझा की बिक्री में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।